ज़्यादा आगे होती है।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर दारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन मानव नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नीताय गौरानी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौरानी बोल हरि जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिवार जगदाचार्य श्रोतृ श्रीमदी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिवार जगदाचार्य श्रोतृ सदर्शी श्रीमद त्रिदंडी को स्वामी महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री श्री राधा गिरधारी गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। द्वारका धाम की जय। त्रिविक्रम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। पतित पावन निताय गौर सुंदर भगवान की जय। भक्त विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिवमणि प्रहलाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य सिवाइंग गेट एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर की जय। श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर नव निर्माण योजना की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल गोइस टू द संबल डिवोटीज ऑल गोइस टू द संबल डिवोटीज ऑल गोइस टू श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर् भवतीर् नष्टकीर् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद प्रथम अध्याय नवे क्रमांक के श्लोक से पाठ करेंगे। कस्मान् मुकुंदो भगवान कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेह ध्वजं गता पितुर्गेह ध्वजं गता क्व वसं ज्ञातिभि श्रधम् कवसं ज्ञातिभि सार्धम् कृत्वान् सत्वतम् पति कृत्वान् सत्वतम् पति कस्मान् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेह ध्वजं गता क्व वा संज्ञातिभि सार्धम् कृत्वा वान् सत्वतम् पति कस्मान् मुकुन्दो भगवान् कस्मान् मुकुन्दो भगवान् कस्मान् मुकुन्दो भगवान् अनुवाद शब्दार्थ इस प्रकार है कस्मात क्यों मुकुंद हर एक को मोक्ष प्रदान करने वाले कृष्ण भगवान भगवान पितु अपने पिता वसुदेव के गेहात घर से ब्रजम ब्रजधाम या ब्रजभूमि गता गए क्व कहा वाससम रहने के लिए रखा ज्ञाति भी उनके संबंधियों के सार्धम साथ कृतवान कर दिया सात्वताम पति समस्त वैष्णव भक्तों के स्वामी। अनुवाद इस प्रकार है भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया। यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहां रहे। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति इज डिवाइन गेस एसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये कृष्ण के परिभ्रमण विषयक प्रश्न है। मथुरा में वसुदेव के घर में जन्म लेने के तुरंत बाद कृष्ण यमुना के उस पार गोकुल गांव चले गए और कुछ दिनों के बाद वे अपने पिता माता तथा अन्य संबंधियों के साथ नंदगांव वृंदावन चले गए।
महाराज परीक्षित कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। श्रीमद् भागवत का यह संपूर्ण स्कंद वृंदावन तथा द्वारका में संपन्न लीलाओं से भरा पड़ा है। प्रथम 40 अध्यायों में कृष्ण के वृंदावन के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है और अगले 50 अध्यायों में कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन हुआ है। महाराज परीक्षित ने कृष्ण के विषय में सुनने की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की और वे इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन कर। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणरयुता श्रीविशाखामृतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। कथा का शुभारंभ करने से पहले मैं राधा गिरधारी मंदिर में प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस व्यासासन पर बैठने के लिए योग्य समझा कि मैं हरि कथा कुछ कर सकूँ। विशेष तौर पर मैं वनमाली प्रभु को पहले प्रणाम करूँगा जो कि मेरे शिक्षा गुरु हैं। जो कुछ भी आज मैंने सीखा, मेरी शिक्षा दीक्षा का कार्य जो कुछ भी हुआ वो उनके माध्यम से हुआ और जो कुछ मैंने सीखा है उसके बलबूते पर मैं बोलने का प्रयास करूंगा। तो यहां बोला गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है भगवान से संबंधित। श्रीमद् भागवत जो है भगवान से संबंधित है। भगवान के चरणों से गंगा जब प्रकट हुई तो गंगा ने तीनों लोकों को पावन कर दिया और जब भागवत की कथा चलती है तब भी तीन व्यक्ति पवित्र होते हैं। कौन? जो कथा करने वाला है, जो प्रश्न पूछने वाला है और जो प्रचारक है। तो ये भागवत कथा का उसकी महिमा है। यहां परीक्षित महाराज श्री कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं कि भगवान का स्थानांतरण क्यों हुआ। वृंदावन की लीलाओं के विषय में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा। श्रीमद् भागवत का ये जो संवाद है वो जिज्ञासा के ऊपर आधारित है। विदुर मैत्रेय के बीच में संवाद हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में संवाद हो रहा है और सुत गोस्वामी और शौनक ऋषि एवं आदि नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषि मुनिगणों के बीच में संवाद हो रहा है। ये तीन कन्वर्जेशन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं और ये है संपूर्ण श्रीमद् भागवत जो कि प्रश्न पर ही आधारित है। प्रश्न क्या है? कृष्ण कौन है? कृष्ण क्या है? जो व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानने के लिए उत्सुक हो वो व्यक्ति बुद्धिमान कहा जाता है। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। पतित पावन निताय और सुंदर भगवान की जय। तो श्लोक में यहां वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा। षड संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद दो प्रकार के कृष्ण का वर्णन करते हैं, एक अवतार कृष्ण एक अवतारी कृष्ण। अवतार कृष्ण कौन है? जो दुष्टों का दमन करते हैं, सज्जनों का उद्धार करते हैं। और जो अवतारी कृष्ण है वो है जो ब्रजभूमि में अपने प्रेमियों के प्रेम से बंधे हुए, यानी श्री श्री राधा गिरधारी जी, ये ब्रजभूमि के कृष्ण है, ये अवतारी कृष्ण है। दो प्रकार के कृष्ण है। तो जो अवतार कृष्ण है वो विष्णु तत्व है। जब वृंदावन में यशोदा माई ने कृष्ण को जन्म दिया तो उस समय कई लोग इस बात को नहीं जानते, श्रील गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के महान शिष्य होकर गए, उन्होंने ग्रंथ निकाला था मथुरा मीट्स वृंदावन, मथुरा जब वृंदावन से मिलता है, तो उस ग्रंथ में इसकी पुष्टि की गई है। गोपाल चंपू में इसकी पुष्टि की गई है, षट संदर्भ में इसकी पुष्टि हो रही है कि यशोदा मैया ने भी कृष्ण को जन्म दिया था, देवकी माता ने भी कृष्ण को जन्म दिया था। देवकी माता का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो ऐश्वर्य भाव का है, और यशोदा मैया का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो शुद्ध वात्सल्य है। पहले हम जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे तो सुबह सुबह जब प्रार्थना होती थी तो उसमें बोला जाता था, ओ लॉर्ड गिव अस अ डेली ब्रेड, हे भगवान हमको हर दिन का भोजन पानी राशन पानी दे दो। अब तुम जिससे राशन पानी मांगते हो उसके पीछे यशोदा मैया लट लेकर दौड़ती है बोल के कि तू खाना खाता है कि नहीं, बोल तो कौन बड़ा है, राशन पानी मांगने वाला या लट लेके दौड़ने वाला। तो ये है भाव। वृंदावन में भगवान योग माया के द्वारा अपने आप को ढक देते हैं, क्योंकि वो रसास्वादन करे, वो भूल जाते कि मैं भगवान हूं। गाय के गोबर में लेटते हैं, गौमूत्र में स्नान करते हैं, इनके ये कार्यकपों को देखने के पश्चात ब्रह्मा आदि प्रमुख देवतागण भी विमोहित हो जाते कि अरे ये भगवान है कि ये कौन है, ये वही नारायण है जो अवतार जिन्होंने लिया है, ये कौन है ये। अभी जब पता चलता है ओ हो ये वही गोलोक अधिपति श्री कृष्ण है, तो पुरुष सूक्त गाने के लिए वहां सारे देवता इकट्ठे होते हैं, तो सारे ग्वाल बाल देखते कि क्यों टाइम पास कर रहे हैं ये, क्या लाला को क्या पता है ये क्या है, सहस्त्र शीर्ष सहस्त्र पुरुष। तो ये जो मैनेजमेंट का सारा काम है वो उन्होंने क्या किया है, अवतार कृष्ण के कंधे पर छोड़ दिया है, जो कि विष्णु तत्व है। और इसकी पुष्टि एक और स्थान में वृंदावन में होती है, जो कि जिस अक्रूर घाट के नाम से प्रसिद्ध है। अक्रूर जी जब कृष्ण नाम को लेकर जा रहे थे तो संध्या के समय वो गायत्री करने के लिए नदी में गए, और जैसे वो नदी के अंदर गए तो उन्होंने शेष नाग पर शयन करते हुए महाविष्णु के दर्शन किए। फिर बाहर आकर देखते तो वही कृष्ण का मुखमंडल, फिर अंदर जाकर देखते तो वही कृष्ण का मुख, फिर बाहर आकर देखते तो वही कृष्ण। तो कृष्ण पूछते, काका क्या हुआ, कुछ देखा क्या? बोले हाँ देखा। बोले जो देखा वही सत्य है। और वहीं से कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बलराम रथ से कूदकर वापस वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य नैव कच्चित् पदम एकम न गच्छति, कि मैं वृंदावन के बाहर एक कदम भी नहीं रखता, मैं वृंदावन छोड़ता ही नहीं हूं। भगवान ने इसकी पुष्टि पहले ही की है। जो कृष्ण वृंदावन से बाहर गए वो देवकी नंदन कृष्ण है, वो वासुदेव कृष्ण है, वो विष्णु तत्व है, वही आगे चल के द्वारधीश बनते हैं। भगवान वृंदावन में धीर ललित है और भगवान द्वारका में धीरोदत्त है। धीर ललित का अर्थ है जो अपने प्रेमियों के प्रेम से बंधे हैं, चुलबुले हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और धीरोदत्त जो है वो कड़क है, ग्रेव, बहुत सीरियस है, गंभीर है। और अपनी वीरता से उन्होंने जितने भी जो समाज के या पूरे पृथ्वी मंडल के वीर है उनको पराजित किया, उनका दमन किया है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भगवान श्री रामचंद्र एवं भगवान श्री कृष्ण को धीरोदत्त नायक करके कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, क्योंकि ये धीरोदत्त नायक है। अब यहां पुष्टि होती है कि भगवान का स्थानांतरण क्यों हुआ। भगवान का स्थानांतरण इसीलिए हुआ क्योंकि उनको कंस का वध करना था, लीला करनी है, यहां से थोड़ा निकले, थोड़े बड़े हो जाए और फिर वो कंस के साथ युद्ध करें। क्यों, ऊपर गोलोक में बैठे बैठे कंस का वध नहीं हो सकता था क्या? जब भगवान गीता में बोलते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वस्य भूतस्य स्थितः अहम आदश्य मध्यंच भूताना मंत है वच कि हे गुड़ाकेश, गुड़ाकेश अर्थ के नाम का दो अर्थ है, एक तो जिस पर महादेव की कृपा हो या फिर जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली हो, कि मैं परमात्मा रूप में प्रत्येक आत्मा का साक्षी हूं, उसका आदि मध्य अंत भी मैं हूं। तो वो यदि चाहे तो बैठे बैठे कंस का हार्ट अटैक करवा सकते थे, इतनी सारी लीला करने की क्या आवश्यकता थी भक्तों को आनंद देने के लिए। एक होता है भगवान के अवतारण का दो प्रकार के कारण होते हैं, मुख्य कारण एवं गौण कारण। मुख्य कारण क्या है? विनाशाय च दुष्कृताम, और गौण कारण परित्राणाय साधुनाम, कि मैं भक्तों को आनंद देने के लिए आता हूं। तो जब देवकी माता के सामने प्रकट हुए तो मुकुट कुंडल चार हाथ पूरा एक्स्ट्रा वीआईपी कोटे का अवतार तैयार, और मुंह में 32 दांत। देवकी माता पूछती है क्या है, रो, पहले रो, पहले रोना चालू कर। फिर जब रोना चालू किया तब वात्सल्य भाव देवकी माता का प्रकट हुआ, बोले जन्मते ही शंख चक्र कदा पद्म लेकर प्रकट हुए, मां में आ गया लो। तो वसुदेव और देवकी दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, ये क्या हो गया ये। फिर भगवान विष्णु रूप में प्रकट होते हैं और बोलते हैं, वसुदेव, देवकी, पूर्व जन्म में आप लोगों ने जो मेरी तपस्या की थी उससे प्रसन्न होकर मैं आपके पुत्र के रूप में आज प्रकट हुआ हूं। ये बहुत समय पहले की है, जब भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था तो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया था और प्रहलाद को वो चाटने लग गए। प्रहलाद को पितृ सुख का अनुभव हुआ, और जब पितृ सुख का अनुभव हुआ तो नरसिंह देव के भीतर भी एक इच्छा जागृत हुई, मुझे भी माता पिता चाहिए। तो मेरे माता पिता बनेगा कौन, ये खंबा नहीं। फिर वो रामावतार में आ गए, दशरथ और कौशल्या, एक नहीं तीन माताएं मिली। किंतु सब लोग वहां अयोध्या में क्या करते थे, कोदंड पानी भोपाल रामचंद्र, भूपाल भू मतलब धरती के पिता, सब प्रणाम करने लग गए। ये भाव भी रास नहीं आया, कुछ और चाहिए। फिर वो कृष्ण के रूप में स्वयं धरती पर आए, और जब स्वयं धरती पर आए तो ब्रज में क्या हुआ, फिर सबका आनंद को सबका प्रेम प्राप्त हुआ। वृंदावन की गाय जब तक कृष्ण को सुबह न देखे अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती है, पहले कृष्ण का दर्शन करे। कृष्ण जाके गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पीते हैं और गाय को भी अच्छा लगता है। गोपियां क्यों कृष्ण को डांटती थी कि हमारे घर से माखन चोरी किया, क्यों वो नाराज होती थी क्या? नहीं, वो चाहती थी कि आज भी हमारे घर से माखन चोरी करे। क्यों? आज भी आएंगे तो आज भी हमको दर्शन होगा। इसीलिए कुंती महारानी भागवत के प्रथम स्कंद में कहते हैं कि बार बार अगर आपने मुझे कष्ट दिया तो बार बार आपका दर्शन होगा, और चूंकि बार बार आपका दर्शन होगा तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है, कस्मान मुकुंदो, मुकुंद मुक्ति प्रदाता, जन्म मृत्यु के चक्र से जो छुड़ा दे वो मुकुंद। इसीलिए गोपियां बार बार कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी। 3 साल 4 महीने तक भगवान गोकुल महावन में रहे, 6 साल 8 महीने तक भगवान छठीकरा वृंदावन में रहे। जब वो 10 साल के हुए तो वो नंदग्राम में थे, और 10 साल 7 महीने के हुए तो चैत्र मास माने मार्च का महीना, अगला महीना जो अब आने वाला है, उस महीने में भगवान ने कंस का वध किया मथुरा में, और तदनंतर शाश्वत रीत्या वो 10 साल 7 महीने के ही रहे, उससे आगे उनकी आयु कभी नहीं बढ़ी। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 45वें अध्याय 4th श्लोक की पुष्टि है, उसके आगे उनकी आयु कभी नहीं बढ़ी। भगवान राम एवं भगवान विष्णु 25 साल के युवक की तरह दिखते हैं और भगवान कृष्ण 10 साल 7 महीने। बस इससे क्या हमको पता चलता है, जो आम व्यक्ति होता है वो बढ़ता है युवा से वृद्ध, वृद्ध से फिर मृत्यु, किंतु कृष्ण की स्थिति में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मया दक्षिण प्रकृति सुयति सुचराचर, भगवान गीता में कह रहे कि प्रकृति मेरे अधीन है और हम किसके अधीन है, हम प्रकृति के अधीन है। इसीलिए भगवान की आयु कभी नहीं बढ़ती, और इस समय में उन्होंने कंस का वध किया। 6 महीने के थे तो पूतना की एकदम जान खींच ली, चैप्टर क्लोज, डिस्कशन ओवर, नेक्स्ट दूसरा कौन आ रहा है? एक एक करके सारे असुरों का वध कर दिया। मैं महानिधि महाराज के पास, अब जब से मैं दिखूं तो मुझे वृंदावन में राधा कुंड में महानिधि महाराज का संग मिलता है, तो मैं महानिधि महाराज के पास गया था और महाराज से मैंने पूछा, महाराज मैं कृष्ण का रोल करता हूं तो मुझे जिम जाना चाहिए कि नहीं, क्या हट्टा कट्टा बनना पड़ेगा द्वारकाधीश? तो महानिधि महाराज ने बोला, एक हफ्ता मेरे साथ राधा कुंड में रहो और बीच में शयन एकादशी पड़ती है उस दिन निर्जल रखो, रात भर कथा करूंगा, सोए तो मार खाया। ठीक है। तो महाराज ने मुझसे पूछा कि आदियोगी एक बात बताओ, पूतना का जब भगवान ने वध किया था तो कितने महीने के थे? तो महाराज 6 महीने के थे। तो क्या उस टाइम भगवान को मसल्स थे क्या? अपूतना कितनी बड़ी थी? 125 मील लंबी थी। तब बताओ। तो उनके सानिध्य में जो कुछ मैंने सुना आज मैं वो सारा आपके बीच में बताऊंगा। तो इस तरह से क्या हुआ, भगवान ने फिर वृंदावन में अपने, मैंने आपको क्या बताया वृंदावन में कितने साल कब तक कहां भगवान ने लीलाएं की। वसुदेव जी के सामने जब कृष्ण प्रकट हुए जैसे मैंने पहले कहा, फिर वो स्थानांतरण करने का समय आ गया और जब स्थानांतरण करने लग गए तो लेकर गए वृंदावन। तो वृंदावन में अवतारी कृष्ण पहले से ही मौजूद थे। यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया था, क्योंकि प्रसव पीड़ा इतनी तीव्र थी उनको पता ही नहीं चला कि मैंने 2 बालकों को जन्म दिया हुआ है। तो एक कन्या थी एक पुत्र था। तो वसुदेव जी ने कन्या को उठाया और अपने कृष्ण को वहां रख दिया और वो चल दिए। और जैसे ही वो चले गए अवतारी कृष्ण उठ गए, अवतार कृष्ण दोनों एक हो गए। कितने लोगों ने लिटिल कृष्णा मूवी देखी है? लिटिल कृष्णा देखी है आपने? देखा जब भगवान असुरों को मारने के लिए खड़े होते हैं तो कवच कुंडल पहन के खड़े होते हैं, और जब असुर देखते हैं भगवान को तो कवच कुंडल में देखते हैं, और नॉर्मल में भगवान सिर्फ धोती और मोरपंख लगा के, तो वो जो कवच कुंडल है वो देवकी नंदन कृष्ण है। भगवान को मैनेजमेंट नहीं करना है उधर वृंदावन में, भगवान ने पहले ही बोल के रखा है मैनेजमेंट का सारा मारधाड़ का काम विष्णु संभाले, मेरा काम क्या है रासलीला करना, गाय का दूध पीना, गोबर में लेटना, बस माखन चुराना, ये मेरा काम है, ये मैनेजमेंट का काम उनको दे दो। मने मैनेजमेंट नती भावे, केवल रस भावे, बस। गरुड़ हंस रहे देखो हा? मुझे केवल रस चाहिए, मैनेजमेंट नहीं चाहिए, वो विष्णु को सौंप दिया है। और भगवान द्वारका में अगर जाओ तो मैं बैठा था, अच्युतानंद गोस्वामी गदाधर पंडित वंश परंपरा में वो आते हैं, मुख्य प्रधान है वृंदावन में, उन्होंने मुझे बताया कि द्वारका में भगवान धीरोदत्त, धीरोदत्त मतलब क्या है, 80% भगवान सीरियस है, गंभीर है, और 20% केवल भगवान मजाक करते हैं, वो भी अपनी पटरानियों के साथ कमरे के अंदर, कमरे के बाहर नहीं, भगवान काफी गंभीर है। तो इसीलिए वृंदावन में जो लीलाएं हुई हैं वो लीलाएं परिपूर्णतम गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार मानी गई है। आगे चलकर भगवान की जो लीलाएं मैंने जैसे बताया, 2 प्रकार के कृष्ण हैं, कंस का उनको वध करना था। गर्ग संहिता के पन्ने अगर पलटे जाए तो उसमें कई सारी कथाएं आती है। कंस ये उग्रसेन और पद्मावती का पुत्र है। एक समय क्या हुआ था, गोविंद नाम का राक्षस आया था और उसने पद्मावती के संग कर लिया, किंतु वो उग्रसेन का रूप धर के आया था और पद्मावती को ये पता ही नहीं चला। फिर पद्मावती ने जब पता चला तो वह ऐसे पता चला, उनके शरीर के एक अंग में कुछ एक निशान था, वो सिर्फ उग्रसेन के शरीर के अंग पर निशान था, और ये देखा तो ये तो इसके अंग पर शरीर पर निशान नहीं है, तो वो पकड़ा गया। वहां से वो डर के मारे अदृश्य हो जाता है राक्षस, और उसका ये पुत्र है कंस, नहीं तो धर्मात्मा थे उग्रसेन महाराज। कंस को बचपन से ही कुश्ती करने का बहुत शौक था, आजकल देखते हैं ना सारे लड़के लोग जिम जाते हैं एकदम, वैसे कंस को भी बचपन से कुश्ती करने का शौक था। मथुरा के बाहर कुवल्य पीड़ नाम का हाथी आकर खड़ा होता है, जरासंध की विशाल सेना, और कुवल्य पीड़ हाथी यह जरासंध का हाथी है, यह चिंगाड़ने लगता है। तो मथुरा के बाहर जब वो हाथी चिंगाड़ने लगता है तो कंस बोलता है, सेना की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथी का बल था। कंस ने उस कुबले पीड़ हाथी को सूंड से पकड़ा, घर 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 घुमाया और वहां फेंक दिया जहां जरासंध का तंबू सेना का कैंपेन लगा हुआ था। धड़ाम से जरासंध का तंबू टूट गया। बोले ये क्या हो गया? बोले एक हाथी फेंक दिया। किसने? वह कंस ने। अस्ति प्रप्ति को मगध से बुलाओ, ये मेरा दामाद बनने के लायक है। तुरंत शादी कर दी, तुरंत। अब सोचो जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथी का बल था, भीम जाता तो कंस भीम को पछाड़ देते, इसीलिए कृष्ण ने कंस को मारा और जरासंध को मारने के लिए भीम के पास भेजा। परम नियोजन करता है ये। जब हम बोलते हैं ना हमारे साथ आज बहुत गलत हो गया, अरे 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 धंधा में घाटा पड़ गई, अरे बाबा हाँ टेस्ट पे टेस्ट हो गया, अगर एक मिर्ची खाने में ना हो तो ओ हो 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 हो। किंतु भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या अनुचित है। ये देखो इनकी मैनेजमेंट करने की कला इसी लीला से प्रकट होती है कि कंस को मारने के लिए खुद गए और जरासंध को मारने के लिए भीम को भेजा। नहीं तो कंस तो पछाड़ देता, 10,000 हाथी का बल तो भीम के अंदर भी था, यहां तो कुंवर ने पीड़ को उठाकर ही फेंक दिया। तब कंस के अंदर कॉन्फिडेंस और जाग गया, अरे मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। फिर कंस ने पूरे विश्व भ्रमण के लिए निकल गया। सबसे पहले कंस आया महिष्मतिपुर, राजा को बोला कुश्ती लड़ोगे? हारूंगा तो मैं तुम्हारा दास, और अगर तुम हार गए तो तुम मेरे दास। बोले ठीक है, मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे चार पुत्रों के साथ लड़ लो भाई। बोले कौन चार पुत्र? चाणूर, मुष्टिक, शल्तोषल। इन सबको मल्ल युद्ध में पराजित करके कंस ने अपना दास बना लिया और आगे चल के कृष्ण ने इन्हीं असुरों का वध किया। हम भागवत के दशम स्कंद में पढ़ते तो है कि ये सारे असुर कंस के अंडर में आए, किंतु कैसे आए तो इसकी पुष्टि गर्ग संहिता में दी है। ये भगवान केवल 18,000 भागवत के श्लोकों तक लिमिट नहीं है, अधोक्षज, वो हमारी बुद्धि से परे है। श्रीमद भागवत के रचयिता नारद, शुक और व्यास ये भी भगवान को नहीं समझ पाए, बोलते हैं कि नहीं नहीं भगवान तो परे हैं भाई। भगवान कैसे समझे जा सकते हैं? भक्ति से, प्रेम से। जब आप भगवान से प्रेम करो, संबंध उनके साथ जोड़ो। ये वृंदावन में जो भी लीला हुई, विदुरानी के पास जाते तो काकी बोलते, कुंती के पास जाते तो बुआ बोलते, द्रौपदी के पास जाते तो बहन एवं सखी बोलते, हाँ इसका अर्थ क्या है? इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि हर जीव को अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है इससे। तो यहां महिष्मतिपुर में जाकर उन्होंने चाणूर, मुष्टिक, शल्तोषल को अपना बंदी बनाया। फिर वहां से जब लौट रहे थे तो प्रयांगण पर्वत पर उनको द्विविध वानर और केशी राक्षस मिला। केशी राक्षस के जो बाल थे वो बादलों को काट रहे थे। कंस ने उनके नाक में ही हाथ डाल दिया, नीचे पछाड़ दिया। कंस ने बोल, आधिपत्य स्वीकार करता है मेरा? हां करता हूं। केशी को अपना अधीन बना लिया। द्विविध वानर के साथ 45 दिन तक कंटिन्यूस लड़ाई हो रही थी, मुक्का मार, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। और उससे क्या हुआ, बाजू में महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। बोले कोई क्षत्रिय फिर से आ गया, वो परसा लेकर काटने के लिए आए, देखा कंस है, ओहो इसकी मृत्यु तो किसी और के हाथों लिखी है, मैं मारूंगा नहीं, ये ले ये धनुष पकड़। अब एक ताड़ का पेड़ कितना लंबा होता है? ताड़ का पेड़ कितनों ने देखा है? ताड़ का पेड़ देखा है ना? ताड़ का पेड़ कितना लंबा होता है? वो जो धनुष परशुराम जी ने दिया वो 12 ताड़ पेड़ जितना लंबा था। बोले धनुष साथ में लेके जा, जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर इसे भंग करेगा वो तेरी मृत्यु का कारण होगा। और कृष्ण ने वही धनुष तोड़ दिया था जिसकी पूजा कंस ने रखी थी, तो धनुष लेकर गए साथ में। फिर बीच मार्ग में बकासुर उड़ता हुआ है, बकासुर का पंख पकड़ के नीचे रख दिया नीचे, और उसको मारने ही वाला है तो बकासुर की बहन बीच में आई, पूतना, और पूतना ने पॉलिटिक्स किया, नहीं 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 आप दोनों मेरे भाई हो, अपने भाइयों के बीच में मैं लड़ाई कैसे देख सकती हूँ। बकासुर की जान बचाने के लिए कंस को अपना भाई बनाया, बोले आज से तू मेरी बहन। तो इस तरीके से ये सारे असुर जो है वो कंस के अधीन हुए, और एक एक करके जब भगवान वृंदावन में थे उन्होंने सारे असुरों का वध किया। तो ये स्थानांतरण क्यों हुआ था? इन असुरों का वध करने के लिए। भक्तों को आनंद देने के लिए और इन असुरों का वध करने के लिए, ताकि ठीक से कृष्ण का नंद बाबा के घर में लालन पालन हो सके। ये तो आगे चलकर यह प्रश्न आता है, यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहां कहां रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया, 3 साल 4 महीने तक वो गोकुल महावन में रहे, 6 साल 8 महीने तक वृंदावन छठीकरा में उन्होंने वास किया, 10 साल की आयु में वो नंदग्राम में रहे, और 10 साल 7 महीने के जब हुए तो उन्होंने कंस का वध कर दिया मथुरा में जाकर। अब यहां भागवत में श्लोक आता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये ते चामसा कला पुमसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये अद्वैताचार्य जी के आविर्भाव दिवस पर मैंने कथा बताई थी, किंतु जिन लोगों ने नहीं सुनी उनके लिए मैं वापस ये कथा दोहरा रहा हूं। अब इस श्लोक की पुष्टि गर्ग संहिता में दी गई है। श्रीमद भागवत जो है वो भगवान का वैभव प्रकाश है, और गर्ग संहिता जो है वो भगवान का माधुर्य प्रकाश है। देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास को कहा कि ये क्या पुराणों की रचना कर दी है, कृष्ण की कथा लिखो, कृष्ण क्या है इनके विषय में बताओ। तो उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, जहां कृष्ण के अवतार, कृष्ण के सारे ब्रह्मांड की रचना क्या हुई है, कैसा हुआ है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। वहां से वो गर्ग मुनि के पास गए और बोले कि हे गर्गाचार्य, कृष्ण छोटे से बड़े आपकी आंखों के समक्ष हुए हैं, इसलिए अब उनका आपने उनका नामकरण भी किया हुआ है, तो आप उनकी लीलाओं के विषय में लिखो। तो उन्होंने गर्ग संहिता लिखनी शुरू की। गर्ग संहिता में मथुरा खंड, गोलोक खंड, वृंदावन खंड, द्वारका खंड, अश्वजीत खंड, विश्वजीत खंड, बलभद्र खंड, ये कैंटोज है, ये स्कंद है किसके, गर्ग संहिता के। तो उसमें सारे देवी देवगण जाते हैं क्षीर सागर पर, पुरुष सूक्त करते हैं तो उनको चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है, लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं दरअसल इमरजेंसी आ गई है, अवतार लेना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं नहीं, मैं अवतार नहीं लूंगा, मेरे स्वामी अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी बोलते हैं आपका कौन स्वामी है, आपके नाभि कमल से तो मैं उत्पन्न हुआ हूं। बोले चलो मेरे साथ। तो वैकुंठ लोक लेकर गए। अब वैकुंठ जगत में भी असंख्य प्रकार के वैकुंठ है, आदि वैकुंठ, रमा वैकुंठ, शेष वैकुंठ। तो वो आदि वैकुंठ लेकर गए जहां 8 हाथ वाले नारायण विराजमान है। सारे देवी देवताओं ने प्रणाम किया, चतुर्भुज नारायण भी वहां उपस्थित थे। तो बोले आप लोग जो चाहते हो वो कार्य मैं नहीं कर सकता, मेरे बॉस के पास चलो। तो सारे देवता एक दूसरे का मुंह देखने लग गए, एक कौन है रे, केवी रीता बॉस छे ने है, बॉस छे गए, सब पसीना पहुंचने लग गए। भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तो अपने पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड को छेद दिया था, और उस छेदने के बाद वहां से विरजा नदी बहती है। ये एक विरजा गोपी थी पहले, जो कुंज में भगवान के साथ बैठी थी। जैसे ही भगवान ने उनका आलिंगन किया तो उनको 7 पुत्र हुए। तो सबसे छोटा जो था, जो अपने भाइयों के साथ खेल रहा था, तो रोते रोते आया और बोलता है मा 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 भाइयों ने मारा मारा मारा। भगवान ने वो सुनते, भगवान ने कान बंद कर लिए, भगवान उठ के वहां से चल दिए। विरजा को क्रोध आ गया, बोलती है कि तुम्हारी वजह से कृष्ण मुझे छोड़कर चला गया, तुम और तुम्हारे 7 भाई जाओ, मैं शाप देती हूं द्वीप बन जाओ। इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं ना जम्बू द्वीप, वो जो छोटा भाई था ना जो रोता हुआ आया, वो जम्बू द्वीप बन गया। और राधा रानी को पता चला कि हमारे महाशय वहां बैठे हुए, वो आ गई, अटके मारे विरजा ने नदी का रूप ले लिया। तो राधा रानी ने बोला आज के बाद तुम इसी नदी के रूप में बहती रहोगे। तो वो विरजा नदी वैसे बहती है। तो उस नदी में नौका में बैठकर 8 हाथ वाले नारायण चतुर्भुजी नारायण के साथ गोलोक लेकर जाते हैं। गोलोक धाम जो है वो अनंत शेष की गोद में स्थित है। अनंत शेष श्वेत वर्ण का है। भगवान ने जब गोलोक का निर्माण किया था, भगवान के मन से गाय और बैल की उत्पत्ति हुई। यहां से द्वारका, यहां से मथुरा, यहां से नंद बाबा प्रकट हुए, यहां से उपनंद, यहां से निकुंज प्रकट हुआ, यहां से वृंदावन, और जो जहां से पसीने निकलते यहां से सारे ग्वाल बाल प्रकट हुए, यहां से श्रीदाम सखा प्रकट हुए, यहां से राधा रानी प्रकट हुई, आराधना नामिति राधा, और राधा रानी के दोनों कंधों से ललिता विशाखा प्रकट हुई, और यहां रोम कुपो से सारी गोपियां प्रकट हुई। इस तरह से हमने गोलोक का निर्माण किया। अब गोलोक पर जो अपनी गोपिकाएं हैं हट्टी कट्टी लट हाथ में लेकर, एक लट पड़ जाए तो बुखार ठंडा हो जाए, तो ऐसी गोपियां सारी दो दो गोपियां द्वार पर खड़ी हैं। और जो मेन गोपी थी उनका नाम है शतचंद्राना, लट सामने रख दिया। हाँ कहीं जवान उछेरे भाई, सीधे सारे लोग, ये तो कॉरपोरेट सेक्टर के सब आ गए। तो बोले राधा माधव का दर्शन करना है, बोले गिरधारी जी अभी व्यस्त है अंदर, रुको थोड़ा। फिर जब गिरधारी जी को पता चला तो गिरधारी जी ने आज्ञा दी पट खोल दो। फिर एक एक करके सातों पट खुल गए, फिर देखा ललिता विशाखा राधा गिरधारी की सेवा कर रही है, और आगे जब आपका मंदिर बनेगा तो उसमें ललिता विशाखा का प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है। तो ललिता सखी राधा गिरधारी जी की सेवा हो रही है, जब सेवा हो रही है तो सब लोग हाथ जोड़कर खड़े। इंद्र तो एकदम धंधा मंद चल रहा है, अब क्या करे, कुर्सी संकट में, अब कुछ कर लो। अभी भगवान बोलते हैं वेल इट्स टाइम फॉर मी टू टेक इनकार्नेशन, बट मैं अवतार नहीं लूंगा, मैं धरती पर स्वयं आऊंगा। तो अच्छा स्वयं आएंगे, अवतार नहीं लेंगे। आप लोग एक काम करो, आप यदुवंश में जन्म लो, ठीक है, मैं आ रहा हूं। भगवान ने पहले से ही सेटिंग करके रखी है, तुम मेरी मां बनोगे, तुम मेरे बाप बनोगे, सब पूरी सेटिंग पहले से तैयारी है। राधा रानी बोलती है आपको जाना है ना, तुम्हें जाओ, मुंह नती आवीश जाओ। बोले क्यों? बोले इसीलिए, वहां आकर क्या करूंगी मैं, ना कदंब वृक्ष, ना तालवन, ना कुछ, ना गोपिया, ना यमुना, ना गोवर्धन। अच्छा अच्छा एक मिनट संभल जाओ, इतनी सी बात है ना, ठीक है। उस गोलोक का 84 कोस भगवान ने उठाया और इस धरती पर रख दिया, और उसी की हम कार्तिक में परिक्रमा करते हैं ब्रजमंडल 84 कोस, क्यों ये भौम वृंदावन पर उस गोलोक वृंदावन का ये रखा हुआ है। राधा रानी ने कहा एकांत स्थान चाहिए रास करने के लिए, भगवान ने बोला ठीक है। हृदय से गिरिराज गोवर्धन को प्रकट किया, और उस गोवर्धन को धारण करने वाले गिरधारी जी आपके यहां सेवित है, जिन्होंने राधा रानी के प्रसन्नता के लिए एकांत स्थान का निर्माण किया, वो है गोवर्धन। आप लोग बड़े महान हैं यहाँ जो राधा गिरधारी की उपासना कर रहे हैं। देखो चेहरे पर स्माइल देखो उनकी, आज कथा से संतुष्ट हो गए। भगवान को भी अच्छा लगता है वाकई में, ध्यान से देखो मुस्कुराओ। ये जागृत विग्रह है, ये विग्रह कोई आम विग्रह नहीं है, मेरे ये पर्सनल मेरा रियलाइजेशन है। मैं जब जब इनके सामने कोई मन्नत मांगता था वो पूरी करते, मैं यहाँ जब इसी मंदिर में यही मैं पीछे ड्रामा करता था, गरुड़ध्वज प्रभु, वनमाली प्रभु सब जानते पुराने भक्त, दामोदर हरि प्रभु, सुधांशु प्रभु, यहां खड़े होकर मैं बोलता था हस्तिनापुर हस्तिनापुर हस्तिनापुर, गिरधारी जी ने मुझे दिल्ली भेज दिया, हस्तिनापुर ही भेज दिया जा। ये जागृत विग्रह ही है, अगर आप मन से सेवा करो और जो मन्नत मांगो इनके सामने प्रार्थना करो, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं गिरधारी जी कभी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तो ऐसे गिरधारी जी के साथ हम यहां गिरधारी की सेवा कर रहे। तो भगवान ने इस प्रकार से धराधाम पर आए, लीलाएं की, और ये लीलाएं जो है वो हमारे लिए है। जन्म बहुत छोटा है, मनुष्य जन्म यूं सटासट चला जा रहा है। आज रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है। रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में श्रीरंगम नाम का एक मंदिर है। ये श्रीरंगम मंदिर एक शहर जितना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, और उसमें जो विग्रह है वो भगवान विष्णु का है, जिसे रंगनाथ कहा जाता है, द्विभुजी नारायण है जो लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे हैं। ये विग्रह भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण जी को दिया था। भगवान विभीषण जी बोले आपने तो पुल बना लिया, आप कोई भी आया राम गया राम आएगा लंका पे प्रहार करेगा। बोले नहीं, मैं ये विग्रह दे रहा हूं तुम्हें, इसकी पूजा करो। ये एकमेव विग्रह है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करता है, और मैं यही से बैठे बैठे अपनी कृपा दृष्टि तुम पर रखूंगा। तो रंगनाथ जी की वहां सेवा होती है। ये रंगनाथ जी का मंदिर जो रामानुजाचार्य जी के पूर्वती आचार्य थे उन्होंने जो बनवाया, वो 4 लोगों की सहायता से बनवाया। उस समय का सबसे बड़ा चोर, उस समय का सबसे बड़ा पहलवान, उस समय का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ करने वाला, उस समय का सबसे बड़ा माहिर जो ताला तोड़ने में माहिर है, ये 4 लोग, और जो जादूगर जो पानी के ऊपर चलता है, इन लोगों की सहायता से ये श्रीरंगम मंदिर बनवाया गया। आचार्यों की ये शिक्षा है कि जिसके अंदर जो गुण हो, जो कला हो, उसको ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अगर आप दिल्ली मंदिर आओ तो दिल्ली मंदिर में हर मंदिर के एक एक हीरे मोती लगे हुए। कोई अकाउंट्स में माहिर है तो कोई इलेक्ट्रिकल में माहिर है तो कोई किसी में माहिर है। और राधा गिरधारी मंदिर से जो व्यक्ति निकला वो हीरा बन के निकला। ये मैं नहीं, ये कमलोचन प्रभु बोलते हैं। कोई आया राम गया राम नहीं निकला, गरुड़ शिव की खिचड़ी खाके ये देखो खुश हो गए। आपकी इस हंसी को देखने के लिए मुझे क्या क्या बोलना पड़ता है वो मैं जानता हूं। हाँ, तो इन लोगों की सहायता से उन्होंने श्रीरंगम मंदिर बनवाया। रामानुज, राम के अनुज यानी लक्ष्मण जी के वो अवतार है जिन्होंने, जिनके पास वाक शक्ति है। कल वनमाली प्रभु मुझे बता रहे थे उनके पास वो शक्ति है जो वो, जैसे अनंत शेष के पास सहस्त्रमुख है, सहस्त्रमुखों से भगवान की स्तुति करते हैं, तो उसी के डबल रामानुजाचार्य भी स्तुति करते थे भगवान की। और रंगनाथ जी के साथ उनका एक पर्सनल संबंध था। एक छोटी सी 12 साल की लड़की थी, उसका नाम था अंताल। 12 साल की लड़की, उसके पिताजी की एक सेवा थी रंगनाथ जी के सामने। क्या? कि फूल लाना है, माला बनाना है, पुजारी को जाकर देना है, ठीक है। पर अंदाल क्या करती थी, माला बनने के बाद खुद वो माला पहनती थी, आईने में देखती थी कि माला ठीक है कि नहीं। अब ये फूल की पंखुड़ी अगर ये काली पड़ गई हल्की सी तो वो फेंक के नहीं माला बनाती थी। इतनी सी गलती, रत्ती भर की गलती नहीं होती थी। पिताजी पूछते थे ये क्या है, ऐसा क्यों करती है तू? बोले मैं रंगनाथ जी को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। 12 साल की लड़की, चेतना देखो। बोले पति के लिए जो चीज जाएगी वो बढ़िया बनी जाएगी, तो ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, जो पूजक जो थे और पुजारी लोग में से ऐसे ही, जैसे कृपा सिंधु प्रभु बैठे हैं, ऐसे कोई पुजारी जा रहा था सामने से, देख लिया ओ ये तो खुद माला पहन रही है। गए कंप्लेन कर दी, है प्रभु जी देखो ये हो रहा है यह सब। राजा ने मीटिंग बुलवाई, काउंसिल मीटिंग बैठ गई। दूसरे दिन बोलते बेटी ये क्या है, तू मजाक कर रही है, जानती है तू? उस समय के राजा भगवत भक्त थे, धर्मात्मा थे, उनको लगा बालिका है मजाक कर रही होगी। राजा के सामने उस आंडाल ने बोला मैं रंगनाथ जी को अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। राजा बोलते देख मजाक ना कर। बोला हाँ नहीं मैं कर चुकी हूँ, ठीक है कल ब्रह्म मुहूर्त में आना मंगल आरती के समय, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। रात भर श्रीमद भागवत का अध्ययन किया अंडाल ने, रत्ती भर का भय नहीं चेहरे पर। दूसरे दिन माला लेकर जाती है और जो ही भगवान रंगनाथ के गले में डालती है, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और अंडाल को अपने इस साइड लेते हैं। पत्नी हमेशा लेफ्ट में होती है, वामांगी बोला जाता है पत्नी को, और उसके कंधे पर ऐसे हाथ रख के बोलते हैं मैं रंगनाथ अंडाल को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। और ये बोलते ही अंडाल के साथ अदृश्य हो जाते हैं और फिर लोगों को लगता है ओ ये है रंगनाथ जी का मंदिर। कभी अगर जीवन में आपको समय मिले तो थोड़ा सा टाइम डायमंड मार्केट से निकालकर रंगनाथ जी की यात्रा करने के लिए श्रीरंगम जाओ। कमलचंद प्रभु तो बोल बोल के थक गए होंगे, वो तो यात्रा निकालने में बहुत उत्सुक है, उनको अभी बोलो तो अभी यात्रा लेकर चले जाएंगे। तो ये रंगनाथ जी का वो मंदिर है जहां रामानुजाचार्य ने बैठकर उन्होंने मायावाद का खंडन किया। उनका एक पहलवान शिष्य था, वो एक वेश्या के प्रति आसक्त हो गया, बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। वेश्या को देखते उसको लगता दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हार गुण है, मतलब उसकी सुंदरता को देखते ही वो इतनी सुंदर है। रामानुजाचार्य समझ गए कि हाँ ठीक है शिष्य सही हाईवे पे जा रहा है, उसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। बोले इधर आओ, बाकियों ने गुरु भाइयों ने कंप्लेन कर दी, आपको पता है क्या, अरे वो तो ऐसे नहीं, अरे ठीक है कानपुसी हो गई। अब वो किसी की बातों में आने वाले गुरु तो थे नहीं, वो जानते थे शिष्य को नस नस जानते थे। वो उसको बुलाया, बोले एक बात बताओ, अगर मैं इस कन्या से सुंदर कोई तुमको वस्तु दिखा दूं, किसी से मिलवा दूं, तो तुम इसको भूल जाओगे? बोला हाँ मैं भूल जाऊंगा पक्का। हाँ पक्का, मेरे साथ ब्रह्म मुहूर्त के समय मंगल आरती में लेकर गए, वहां सिर्फ दिए जलते हैं, और जो दिए की रोशनी भगवान के मुखमंडल पर गिर रही थी उस रोशनी को देखकर पहलवान ऐसे हो गया। बस एक तक रामानुजाचार्य समझ गए। रामानुजाचार्य अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं, काम हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। ये है रामानुजाचार्य, प्रचार करने का और लोगों के हृदय परिवर्तन करने का ये उनकी कला थी। वो डांटते फटकारते नहीं थे, वो प्रेम से उन्होंने लोगों का हृदय परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम पुरुषोत्तम के उपासक थे। तो जो प्रेम पुरुषोत्तम का उपासक है वो प्रेम करेगा। आप जब प्रत्येक के अंदर कृष्ण दर्शन करोगे, भगवान गीता में क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्न ब्रह्मिणी कभी हस्तिनी सुनी चैव स्वपा के पंडित समदर्शिना। पंडित कौन है? जो कृष्ण का दर्शन प्रत्येक जीवात्मा में करे, तब वो सबके साथ प्रेम करेगा। और जब सबके साथ प्रेम करेगा तब भगवान से भी प्रेम करना सीखेगा। 9:10 हो गए, मैंने ज्यादा समय ले लिया, 10 मिनट ज्यादा ले लिया, किंतु मैं वनमाली प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मुझे व्यासासन पर बैठने के योग्य समझा। जो कुछ मैंने सीखा जाना वो उन्हीं से सीखा। इस मंदिर में मैं रहा, उनके सामने मैंने मस्ती भी की, उनके सामने मैंने उदंडता भी दिखाई, किंतु उन्होंने हमेशा मुझे संभाला संवारा। और आज मतलब मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से हूँ। तो इसीलिए राधा गिरधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सत्रा, शिशी गौर निताय, राधा गिरधारी मंदिर की जो कांग्रीगेशन है, भक्त वृंद है, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे व्यासासन पर बैठकर हरि कथा करने का मौका दिया। कृष्ण कथा जो है वो इतनी रसमय है। प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ निकाला है, कृष्णा बुक, श्रीमद भागवत का 10वां स्कंद। अब मैंने आप लोगों को जो कथा बताई, पता चला कोई बोर हुआ, समय कैसे गया पता चला नहीं ना? तो जितनी आप कृष्ण की लीला सुनोगे उतना ही आपको, अगर मैं कल जाऊं और गरुड़ध्वज प्रभु को बोलूं, प्रभु जी वो कन्या ना बहुत सुंदर है भाई, गरुड़ध्वज प्रभु सुन लेंगे, हाँ ठीक है चलो, गरुड़ध्वज प्रभु वो बहुत सुंदर है, हाँ ठीक है, गरुड़ध्वज प्रभु उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। एक हफ्ते तक सुन सुन के लास्ट में क्या बोलेंगे, भैया कौन है दिखा दे मेरे को। तो रुक्मिणी देवी ने क्या किया था, बचपन से देवर्षि नारद के मुख से केवल कृष्ण की कथा सुनी, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, और सुन सुनकर जब वो बड़ी हुई तो ठान लिया शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। और जब जिनके बारे रुक्मिणी ने देखा नहीं था कृष्ण को, और जब भगवान रथारूढ़ है और रथ पर रुक्मिणी को पहली बार देखते हैं तो रुक्मिणी देखती है सोने का मुकुट, सावला वर्ण, घुंघराले बाल, चौड़ा वक्षस्थल, पतली कमर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप चिंतामणि नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कमर इतनी पतली है जैसे कमल पुष्प की डंडी हो। और महानिधि महाराज अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि अगर कृष्ण आपके सामने खड़े हो जाए ना तो आप ये पता ही नहीं कर पाओगे वो लड़का है कि लड़की है, वो इतने सुंदर है। एक वो छोटी कथा मैं आपको बताता हूं, उसी से मैं पूर्ण विराम करूंगा। महाराज बता रहे थे, इस्कॉन का एक भक्त गोलोक चला गया, और जैसे वो गोलोक के द्वार पर आया, भगवान अपने आसन से दौड़े गए, गले लगाया और गालों पे हाथ रख के बोलते हैं, आने को बड़ी देर लगा दी पर तू आ तो गया, मैं तेरी राह देख रहा था, आजा। और भक्त बोलता है कि मैंने धरती पर गोलोक के बारे में बहुत सुना था, देखना चाहता हूं। अरे देखना क्या, आज से तू मेरे साथ में ही रहेगा, चल तुझे दिखाता हूं। पूरे गोलोक को दिखाने लग गए, जैसे टूरिज्म होता है ना, बोले ये कदम वृक्ष, ये वो, यहां मैं बैठकर ये करता हूं, यहां मैं कालिया दमन मैंने यहां किया था। करते 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 घूमते 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 एक बड़ी दीवार सामने आ गई। तो भक्त पूछता है, भगवान ये दीवार क्या है? पता है कृष्ण ने क्या बोला? बोले इस दीवार के पीछे इस्कॉन है। बस दीवार फांद के अंदर जाना है, हम इतने निकट हैं। प्रभुपाद जी ने इसीलिए बोला बैकडोर एंट्री, दीवार फांद के अंदर जाना है। और वो दीवार फांदने की जो कला है जो विधि है वो क्या दिखाई है, सोलह माला का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, श्रीमद् भागवत एवं गीता का अध्ययन, वैष्णवों की सेवा, और मंदिर में आपको जो भी सेवा मिलती है वो करो। गिरधारी जी की यहाँ उपासना देखो, गिरधारी जी यही आए और गिरधारी की महिमा भी मैंने आपको बताई, ये ऐसे नहीं पता चलती। वृंदावन अगर घूमना है तो महानुभाव महाभागवत के साथ वृंदावन घूमो, जहां आपको पता चले है क्या वस्तु स्थिति। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। पति पावन निताय गौर सुंदर भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे।